नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को समर्पित चार योजनाओं का शुभारंभ किया, कहा महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 16 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म मामले में लगभग 18 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए और आकाशवाणी भवन मुख्यालय में होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रज रंग होरी का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली की महिलाओं को समर्पित चार योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण एक सभ्य राष्ट्र की सच्ची पहचान है। राष्ट्रपति ने बताया कि केंद्र सरकार PM उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है।
बेटी बचा बेटी पढ़ा योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन परियोजनाओं को महिलाओं ही नहीं बल्कि उन्हें पूरे परिवार को सशक्त और समृद्ध करने वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण आवश्यक है और दिल्ली लखपति बिटिया योजना इसका उदाहरण है।
इस योजना से बेटियों के जन्म से लेकर उनकी हायर स्टडी वोकेशनल ट्रेनिंग तक को सुनिश्चित करने का बहुत मजबूत काम किया है। यह योजना दिल्ली के बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की आधारशिला रखती है और उसके साथ साथ उसकी गारंटी भी देती है। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये केवल योजनाओं का शुभारंभ नहीं है बल्कि सम्मान का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं के शिक्षा, गतिशीलता और घरेलू सशक्तिकरण जैसी पहलुओं को मजबूत करने की कोशिश की गई है।
हर बेटी का जन्म उत्सव है और महिलाएं जब घर से निकले बाहर निकलते हुए उनका आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता देश का नेचर है। आज ये बहुत ही सुनहरा पल है हमारे लिए जब चार योजनाओं को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जनता को समर्पित किया गया है।
और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राजधानी की महिलाओं को DTC बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मेट्रो, IRTS और अन्य सार्वजनिक सेवा वाहनों में भुगतान कर यात्रा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस कार्ड योजना के तहत 3 प्रकार के मोबिलिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। पिंक कार्ड मुफ्त दिया जाएगा और इसका खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। वहीं होली और दिवाली के अवसर पर राजधानी के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को सालाना 2 मुफ्त LPG सिलेंडर जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 853 रुपए की राशि आज DBT के माध्यम से हितधारकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। राष्ट्रपति ने दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत आज 40,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। वहीं दिल्ली लखपति बिटिया योजना का भी आज शुभारंभ किया गया। यह योजना दिल्ली सरकार की लाडली योजना के स्थान पर लाई गई है। इसके अंतर्गत हर पात्र बालिका के नाम विभिन्न विभिन्न चरणों में कुल 61,000 रुपए जमा किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि अगर बालिका स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा जैसे निर्धारित शर्तें पूरा करती हैं, तो 21 वर्ष की आयु तक ये राशि ब्याज सहित बढ़कर 1,00,000 रुपए से अधिक हो जाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 16 पुस्तकों का विमोचन किया। इनमें तमिल भाषा की 14 पुस्तकें और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की एक एक पुस्तक शामिल है। पुस्तक विमोचन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल साहित्य में योगदान देने और इसे विश्व स्तर पर भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए लेखकों के प्रयासों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रगान वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि तमिल संस्कृति को विश्व की सबसे अनूठी संस्कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रकाशन विभाग के प्रधान महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला ने बताया कि आज विमोचित की गई 14 तमिल भाषा की पुस्तकें तमिल संस्कृति, संगीत और कृषि पर आधारित है।
14 तमिल किताबें जो हैं वो मूल रूप से तमिल में लिखी किताबें हैं, जैसे जो तमिल साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत, वाद्य यंत्र, भक्ति साहित्य, प्राचीन तकनीकी उपलब्धियां, प्राकृतिक कृषि आदि विषयों पर है। ये बहुत अलग किस्म के किताबें हैं और मैं चाहता हूं कि पब्लिकेशन डिवीजन का जो मैंडेट है वो है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश भर के सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करना।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज खजूरीखास में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन और स्थायी भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं की कमी थी और अब तक ये क्षेत्र मात्र एक केंद्रीय विद्यालय पर निर्भर था। उन्होंने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय के निर्माण से बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिलेगी, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप मुंबई के विद्यार्थियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा का दौरा कर विधायी की परंपराओं, प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने राजधानी के नागरिकों से संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो 2025-26 का लाभ उठाने की अपील की। इस माफी योजना के तहत संपत्ति मालिक तथा कब्जाधारी बिना किसी ब्याज और जुर्माने के अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का निपटान कर सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि इस योजना को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राम भाव महालगी प्रबोधिनी के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने में विद्यार्थियों की भूमिका और उनके नए विचार तथा दृष्टिकोण को सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 37,23,00,000 रुपए हो गया है। निदेशालय ने यह भी खुलासा किया कि ये प्लेटफॉर्म भारत में बिना अनुमति के चल रहा था और कई नकली वेबसाइट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। ईडी ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज नई दिल्ली में रसना कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता ज्ञापन भारतीय उत्पाद और ब्रांड को देश तथा दुनिया में नई पहचान दिलाने और स्वदेशी व्यापार को सशक्त बनाने के लिए किया गया। एक रिपोर्ट।
ये साझेदारी कैट द्वारा आगामी भारतीय व्यापार महोत्सव के संदर्भ में उद्योग और व्यापार जगत के बीच सहयोग के लिए किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत रसना प्राइवेट लिमिटेड, कैट और आई पॉइंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच पारस्परिक सहयोग के माध्यम से व्यापार विस्तार, डिजिटल समाधान, कौशल विकास, प्रशिक्षण, माइक्रो इंटरप्राइज इंक्यूबेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। इस समझौते पर कैट की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया, रसना ग्रुप के प्रबंध निदेशक पिरुज खंबट्टा और प्रौद्योगिकी कंपनी आई पॉइंट वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव मलिक ने हस्ताक्षर किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर कामकाज और पारगमन उन्मुख विकास के मौकों का पता लगाने के लिए एक हितधारक परामर्श पर एक सत्र का आयोजन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में परिवहन निगम ने बताया कि इस सत्र में रियल एस्टेट डेवलपर्स, निवेशकों, रास्ते में सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यावसायिक संगठन और आतिथ्य उद्योग समेत लगभग 35 बड़े संगठन के करीब 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान परिवहन निगम के अधिकारियों ने प्रस्तावित विकास पहलों पर अपने विचार साझा किए और हितधारकों के सवाल के जवाब भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। होली के अवसर पर पूर्वी हिस्सों की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्था की है। उत्तर रेलवे ने कहा है कि आज दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से 22 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। कल भी 22 विशेष ट्रेनें चलाई गई और दिल्ली क्षेत्र से 3 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। रेलवे ने बताया कि पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। रेलवे ने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान भीड़ को संभालने के लिए कल भी 22 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि होली के त्योहार के दिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सुविधा दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी। होली पर्व के अवसर पर आज दिल्ली के आकाशवाणी भवन मुख्यालय के रंग भवन सभागार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रज रंग होली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक गायिका माधुरी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं श्रीमती शर्मा ने इस कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक होली लोकगीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आयोजन में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत सुभाषितम पाठ सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। इस पाठ में आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की युवा शक्ति के अतुलनीय संकल्प पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपने संकल्प को इच्छा शक्ति के साथ पूरा कर रहे हैं, इसीलिए भारत अपने सपनों को साकार कर रहा है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि देश के विकास के लिए सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को 10% से कम करना है। नई दिल्ली में केंद्रीय गोदाम निगम के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि भंडारण और लॉजिस्टिक उद्योग राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय भंडारण बाजार में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2027 तक लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान के महत्व पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर है 0112331048, 0112371711, 0112371706 और 0112331444। राजधानी में दिन भर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को समर्पित 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 16 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म मामले में लगभग 18 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए और आकाशवाणी भवन मुख्यालय में होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रजरंग होली का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।